ಧೇಯಂ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಭೀಷ್ಟದೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಂ ಶಿವವಿರಿಂಚಿನುತಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೃತ್ಯಾರ್ತಿಹಂ ಪ್ರಣತಪಾಲಭವಾಭ್ಯುಪೋತಂ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೇ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸದಗುರು ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪುನಿಸವ ಸಂತ ನಮೋ ಹರಿರಾಮಾಮುರುಭವನ ಮೇಯಾಪದ ಸಮಾನಕೋ ಅಧಮ ಜೀವ ತುಮ ತಾರಿಯ ತುಮಿ ತಾರೇ ಸಂತ ಅವಕಿರಪಾಮೋ ಪರಕರಹೂ ಯೋ ಹರಿದೇವ ಕಹಂತ ಸದ್ಗುರು ಸೇತಿ ವಿನತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸಂಪರ್ಣಾಂ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಂತ ರಾಮದಾಸ್ ನಿಷದಿನ ಕರುಂ ಸಲಾಂ ನಮೋ ರಾಮ ಗುರುದೇವದಿ ಜನತ್ರಿಕಾಲ ಕೇವಂದ್ ವಿಘ್ನಹರಣ ಮಂಗಲ ಕರ್ಣ ರಾಮದಾಸ್ ಆನಂದ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಸೇಠ್ ಜಿ ನೇ ಕಹಾ ಯದಿ ಮೇ ನರಕ್ ಮೇ ಜಾತಾ ತೋ ಬಡಾ ಲಾಭ ಹೋತಾ ಪೃಥ್ವೀ ಕೆ ಲೋಗ್ ತೋ ಭೋಗಿ ಹೈ ಭೋಗೋ ಮೇ ಹೀ ರಹೆನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ವೇ ಮೇರಿ ಬಾತೋ ಕಿ ಓರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಹೀ ನಹೀ ದೇತೆ ನರಕ್ ವಾಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಮಾರಿ ಬಾತ್ ಸುನ್ತೆ तो वे शांति का अनुभव करते और विचार करते कि अब ऐसा पाप नहीं करेंगे, वे पापों से छूट जाते हैं। एक बार सेठ जी एक फल बेचने वाले से अंगूर खरीद रहे थे, उसमें कुछ अंगूर कम तोल दिए। कम तोलने के लिए सेठ जी ने उसे फटकार लगाई, पैसा पूरा लेता है और अंगूर कम तोलता है। पास में कोई था सत्संगी, उसने कहा सेठ जी आप थोड़े से अंगूर के लिए क्यों माथापच्ची करते हो, कहां आप कहां ये। सेठ जी ने कहा तुम्हें तो थोड़े से अंगूर दिखते हैं किंतु मुझे यह बेईमानी के कारण सीधा नरक में जाता हुआ दिखता है। मेरा उसे फटकारना नरक से बचाने के लिए और कुछ नहीं है। क्या बात है। इसी प्रकार एक बार सेठ जी बांकुड़ा में रिक्शा से स्टेशन गए, रिक्शे वाले से पांच आना भाड़ा तय हुआ। स्टेशन पर उतरकर साथी को रिक्शा भाड़ा देने को कहकर अंदर चले गए। साथी को कह दिया इसको पैसा दे देना भाई। प्लेटफार्म पर आने के बाद उस व्यक्ति से पूछा रिक्शे वाले को पैसा दे दिया ना। उसने कहा हाँ दे दिया। कितना दिया? छह आना बताया था, दे दिया। सेठ जी ने कहा नहीं जल्दी जाओ, पांच आने में बात हुई थी, एक आना वापस लेकर आओ। अभी हमारे गाड़ी में बैठने में टाइम जितनी तुम ले आओ। उस सज्जन ने कहा कि सेठ जी अभी एकाने में क्या माता बच्ची करें, यदि वो वहां नहीं मिला तो बात अलग है, मिल जाए तो उसे एकाना लेकर आओ। फिर कहा कि एकाने में क्या एकाने में माता बच्ची करें अपने। सेठ जी ने कहा तुमको तो एकाना दिखता है, मुझे वो नरक में जाता दिखता है, उसने झूठ बोल करके पैसा क्यों लिया। वो ये कहता कि मैं पांच आने में मेरी तय हुई है, भाई साहब आप छह आना दे दो तो अच्छा है, तो हम छह आना की आठ आना ही दे दें, पर झूठ बोलता है वो, लव पैसा। गीता भवन बनने से पूर्व सत्संग में आने वाले सत्संगियों के लिए इनकी पत्नी स्वयं हाथ से भोजन बनाती, सेठ जी की पत्नी। महाराज जी ने कहा कि हमने देखा उसको, इतनी बेचारी सीधी सादी, इतनी सरल थी सेठ जी की पत्नी, पूरी आवाज बोल नहीं सकती, थोड़ी तुतलाती बोती बोलती थी। इतने प्यार से सत्संगियों को भोजन कराती जैसे कोई मां कराती हो। अपने हाथ से भोजन बनाती, खिलाती और फिर बर्तन साफ करती थी। गीता भवन बनने के बाद सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का सत्संग में आए, सभी लोगों के लिए भोजन सामग्री, दूध, सब्जी आदि की व्यवस्था देखते थे, दिन रात कार्य में लगे रहते थे। कई कई सत्संगी सेठ जी को ओलमा भी देते थे। ये क्या है सेठ जी, आटा अच्छा नहीं पीसा हुआ है, ये क्या है सेठ जी, दूध ऐसा आता है, ये देखो सेठ जी क्या है, सब्जी ऐसी आती है, खूब उलाना मिलता और सेठ जी उलाना सुनते। हरिराम जी लुहारा वाले ने कहा कि इतनी व्यवस्था करते हो फिर आप इतनी उलाना भी सहन करते हो, क्यों ये सत्संग का आयोजन करते हो, आपको क्या गर्ज है? जिनको गर्ज है वे आए अपनी व्यवस्था करें, आप क्यों माता बच्ची करते हो? सेठ जी ने कहा अपनी अंगुली के किनारे से दिखाते हुए, मैं चाहता हूं कि जो थोड़ा सा आनंद मुझे मिला है वो आनंद सब भाई बहनों को मिले, इसलिए मैं ये सब कुछ सहन करता हूं। एक बार सेठ जी गुवाहाटी में गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक पर निर्वैर सर्वभूतेषु इस पर प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में उन्होंने कहा कि यदि किसी आदमी का किसी एक आदमी से भी बैर है तो उसका कल्याण तो नहीं होगा। अपने कल्याण चाहने वाले को मृत्यु से पहले पहले अपना बैर भाव हटा लेना चाहिए, चाहे कैसे भी हो अपने हृदय को बैर से खाली कर दो। उसी समय एक सज्जन रोते हुए खड़े होकर बोले, सेठ जी मेरा अमुक अमुक आदमी से बैर है, वो आपकी सत्संग में बैठा है, मैं छोड़ना चाहता हूं, अब क्या करूं? तब वो दूसरा आदमी जो सत्संग में बैठा हुआ था, जिसके साथ बैर की बात थी, वो खड़ा हुआ। खड़ा होकर कहने लगा, सेठ जी हमारा बैर लकड़ों में जाएगा। पहले वाला सज्जन रोते हुए बोला, देखो सेठ जी मैं तो छोड़ना चाहता हूं, ये नहीं छोड़ते अब मेरा कल्याण कैसे होगा? सेठ जी बोले, आप छोड़ना चाहते हैं आपकी तो छुट्टी हुई, अब वे रखना चाहें तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, आपके कल्याण में कोई बाधा नहीं है। इतने में दूसरे आदमी ने विचार किया, ये तो सारा बोझ मेरे पर आ गया। तब उसने कहा, सेठ जी मैं भी अपना बैर खत्म करना, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे सेठ जी के वचनों में शक्ति थी, लोगों का बहुत लंबे समय का बैर थोड़े दिनों में मिट जाता था। और सेठ जी की आदत थी कि लोगों की पंचायती करके आपस का बैर भाव दूर कर दें, चाहे कितना ही सेठ जी को इसके लिए कष्ट उठाना पड़ता पर वे लोगों के बैर भाव को दूर करने में रात दिन लगे रहते थे। राजस्थान में अकाल आदि के समय दूर गांवों में तालाब खुदवाना, कुआं खुदवाना आदि कार्य करते रहते थे, ताकि मजदूरों को मजदूरी मिले और बरसात होने पर जल का संग्रह हो, ताकि गाय वगैरह तथा दूसरे लोग भी जल वगैरह का कष्ट न देखें। अकाल में, बाढ़ में किसी प्रकार की कोई देवी आपत्ति आ जाती तो उस समय में उन्होंने गीता प्रेस सेवा दल की स्थापना की और जगह जगह वे देवी आपदा में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करते थे। सेठ जी कहा करते थे कि जिस वस्तु की आवश्यकता एवं अभाव हो वह वस्तु निःशुल्क वितरण करने की अपेक्षा थोड़ी सस्ती उपलब्ध कराओ, ये ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि अभाव की स्थिति में दुकानदार प्रायः वस्तु को महंगी बेचते हैं, सस्ती बेचने से सभी को आराम से मिल जाएगी और सुलभ भी हो जाएगी, किंतु निःशुल्क वितरण का निषेध भी नहीं करते थे। ये कहते थे कि भाई निःशुल्क की जगह थोड़ा सस्ता करना चाहिए। रामेश्वर जी जालान बंटवारा, रामेश्वर जी जालान का बंटवारा सेठ जी ने किया। उनके परिवार के एक सदस्य ने सेठ जी से कहा, ताऊ जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहता हूं कि आपने बंटवारे में पक्षपात किया है, चाचा जी को ज्यादा रुपया दिया है। सेठ जी बोले, हां भाई गरीबों का मेरे पक्षपात रहता ही है, बी के 5 बेटियां हैं, कमाने वाला लड़को थो जो चलो गयो, तुम लोग 5 भाई कमाने वाले हो तो थे तो फेरू कमाले से हो, वो कठे जावेगो, इसलिए इनमें ज्यादा दे रही है। एक व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी आप भी नित्य नियम 1-1.5 घंटा करते हो और मैं भी 1-1.5 घंटा करता हूं, आपको तो भगवान की हरदम स्मृति रहती है और हमको तो भगवान की याद ही नहीं रहती, कारण क्या है? समय तो बराबर लगाते हैं। सेठ जी बोले, यह सामने जो किवाड़ है उसे किवाड़ मान लिया तो क्या दिन भर घोखना पड़ेगा क्या? ये किवाड़ है, ये मंदिर है, देगा मंदिर हाथी तो सारे दिन घोखना पड़ेगा, स्वतः ही स्मृति रहेगी। इसी प्रकार भगवान का तत्व समझ में आ जाने से स्वाभाविक ही हर समय स्मृति बनी रहती है। एक बार किशोरीलाल जी जालान के बड़े भाई की चिट्ठी आई कि अक्षय तृतीया पर वृंदावन में बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। सेठ जी ने कहा कि गीता प्रेस तो भगवान का मुख है, मुख को छोड़कर चरण दर्शन करने से क्या लाभ? किशोरीलाल जी ने ये बात अपने भाई मोहनलाल को लिख दी। वह वृंदावन ने जाकर फिर गोरखपुर चला गया। एक बार सेठ जी भिवानी गए, प्रातः 4 बजे ट्रेन से उतरते समय सामान उतारने के पहले ही बंसीधर जी केड़िया ने कहा कि आज मेरे घर भोजन करना है। सेठ जी ने स्वीकृति दे दी। भोजन के समय पूछा कि क्या रसोई सब नियम के अनुसार बनी है ना? बंसीधर जी ने कहा कि कुएं से जल लेने वाला जूता पहनकर जल लाया है, बाकी सभी नियमों का पालन किया है। सेठ जी थोड़ी देर तक विचार करते रहे, सोचते रहे, कुछ बोले नहीं। फिर खूब देर सोचने के बाद कहा, अच्छा जिम्मा दो। किसी सत्संगी ने पूछा कि सेठ जी जब आपको भोजन करना ही था तो कई देर तक सोचने में समय क्यों लगाया? सेठ जी ने कहा कि देखो जूता पहन करके गया, वो जल लेकर आया, उसमें हमको कुछ अपवित्रता का ज्ञान हुआ, परंतु बंसीधर जी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, इस कारण से यदि इनके यहां भोजन नहीं करते तो इनके मन में ये विचार आता कि सेठ जी हमारे यहां गरीबी के कारण से भोजन नहीं करते, इसलिए ऐसे आदमी के यहां जिसका भाव बहुत ऊंचा हो, अपनत्व का हो, उसके आदर सत्कार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक बार सेठ जी ने किसी के यहां निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें मालूम नहीं था कि सेठ जी लाख की चूड़ी पहनकर बनाई रसोई नहीं जीमते हैं, जिस माता बहन के लाख की चूड़ी हो उसकी बनाई हुई रसोई सेठ जी नहीं जीमते थे। भोजन के पूर्व किसी ने सेठ जी को बता दिया कि सेठ जी लाख की चूड़ी पहनकर भोजन बनाया गया है, यहाँ के माताओं बहनों के अंदर वो ये पहना हुआ है, कलाई में ये पहनी हुई लाख की चूड़ियां। सेठ जी ने विचार किया, विचार करके और कहा कि चलो पुरुष दो। तो फिर पूछा कि सेठ जी और जगह तो आप मना कर देते हो, यहां आपने ऐसा क्यों किया? तो सेठ जी ने कहा कि इसके अंदर इतना ज्यादा भाव है, उस भाव प्रेम भाव के सामने मना करने की मेरी अंदर से हिम्मत ही नहीं हुई। श्री चक्रधर जी महाराज को स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने सेठ जी से मिलने की प्रेरणा दी। एक चक्रधर जी महाराज थे, वो कलकत्ते आए थे, सबसे पहले महाराज जी से मिले, बड़े वेदांत की बातें करते थे। तो ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? तो महाराज जी ने कहा कि आप सेठ जी से मिलो। तो सेठ जी से मिलने की प्रेरणा दी कि ये सेठ जी कहां मिलेंगे, कि बांकुड़ा में मिलेंगे। कलकत्ते से रात को रवाना होकर सुबह बांकुड़ा पहुंच गए। बांकुड़ा में मकान के नीचे सड़क पर बाबा पहचान न होने से संकोच में इधर उधर टहलने लगे, मकान जानते नहीं थे, पास में तो पहुंच गए। सेठ जी ने बुलाया, देख लिया सेठ जी ने कोई बाबा आया है, बुलाया। बाबा ने सेठ जी से गीता के बारे में प्रश्न किए। बाबा का शंकर भाष्य का आग्रह था, उन्हें सेठ जी की बात जची नहीं। रात्रि हो गई, तब अगले दिन फिर बात में गीता पर चर्चा चली। रात्रि को, अब ये खास बात, रात्रि को बाबा को कुछ ऐसा संकेत हुआ कि बाबा सेठ जी के अनुसार गीता मान लो, इससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। कई दिनों के बाद बाबा ने सेठ जी से गीता पर टीका लिखने के लिए आग्रह किया कि आप टीका लिखो। सेठ जी ने कहा कोई पीछे पढ़कर लिखवा ले तो संभव है, मेरे से तो नहीं होगा ऐसा। तो बाबा ने कहा मैं लिख लूंगा, ये भार मेरे पर छोड़ो। रोज पीछे लगे रहते, यदि दिन भर मौका नहीं लगता तो रात्रि में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और सेठ जी के सामने बोलते, सेठ जी आज गीता की भिक्षा नहीं मिली। कभी कभी सेठ जी कहते बाबा तुम पीछे ही पड़े रहते हो, क्या करो, भूखा आदमी तो भिक्षा के लिए बार बार कहेगा ही ना। तो फिर वो लिखा लेते। ये तत्ववेचनी जो लिखे टीका, ये चक्रधर बाबा जी के इनके प्रयास से फिर महाराज जी भी सब जुट गए थे इसमें। महाराज जी ने कहा कि जब पहली बार गीता प्रेस से ये तत्ववेचनी डिस्पैच हो रही थी गीता तत्वांग के रूप में, तब कहा कि मैं ऊपर से देख रहा था, यूं नीचे यूं पुस्तकें भरी जा रही थी, मेरे मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि देखो वो सेठ जी के भाव कितने कितने दूर तक जाएंगे, कितने लोग लाभान्वित होंगे। उस वक्त मेरे मन में बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। इसलिए हर आदमी के घर में गीता तत्ववेचनी तो होनी चाहिए। एक बार महाराज जी ने यह भी कहा कि जिस कमरे में बैठ करके तत्ववेचनी की भूमिका लिखा रहे थे सेठ जी, उस समय इतनी शांति छाई, सेठ जी भी चुप हो गए और हम लोग जितने वहां पर बैठे सब चुपचाप नेत्र बंद करके बैठे रहे। सेठ जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहा कि आपको क्या हुआ कि हमको तो आगे कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हुई, ऐसे शांति के अंदर डूब गए। यही दशा हमारी हुई, ऐसी बात थी। लादू राम जी ने सेठ जी से भगवान के दर्शन करवाने को कहा कि सेठ जी, लादू राम जी ब्राह्मण थे, दर्शन कराओ। सेठ जी बोले भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य तो भगवान में है, अथवा कोई महापुरुष ही भगवान का दर्शन करवा सकते हैं। ऐसे महापुरुष का यदि दर्शन हो जाए तो समझो कि भगवान अपने घर पर ही बैठे हैं, अर्थात भगवान से बड़ा महापुरुष का दर्शन होता है। एक बार सेठ जी बनारस में प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी से बैर विरोध नहीं रखना चाहिए। उसी समय एक स्त्री ने कहा कि सेठ जी, मेरी जेठानी सलकिया में रहती है, सलकिया है कलकत्ता का एक मोहल्ला, सलकिया में रहती है, उसके साथ मेरा बहुत बैर विरोध है, मैं तो रखना नहीं चाहती हूं पर वो बहुत मेरे से बैर रखती है, कोई उपाय बताओ कि जिससे बैर विरोध खत्म हो जाए। सेठ जी ने उससे तीन बार पूछा कि मैं कहूंगा वो करोगी ना, क्या करूंगी, देख मैं कहूंगा वो करोगी ना कि करूंगी, तीन बार पूछा। उसने कहा जी अवश्य करूंगी, जरूर करूंगी, जो आप कहेंगे उससे एक सूत भी इधर उधर नहीं होंगी। तो सेठ जी ने कहा कि आज ही सलकिया चली जा, सीधे उसी के घर जाकर उतरना और उसको कहना कि देखो मैं आई हूं, मुझे भोजन कराओ। तो उसने वैसा ही किया और वो जेठानी बड़ी राजी प्रसन्न हो गई, बड़े प्रेम से भोजन कराया, बैर विरोध खत्म हो गया। सेठ जी ने कहा कि मेरा मत शंकराचार्य जी से 15.5 आना मिलता है, तुलसीदास जी से 14 आना मिलता है तथा शरणानंद जी से, तुलसीदास जी से 15 आना मिलता है, शरणानंद जी से 14 आना मिलता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने पूछा कि आपका सिद्धांत पूरा का पूरा किससे मिलता है। सेठ जी ने कहा कि मेरा पूरा का पूरा सिद्धांत वेदव्यास जी से मिलता है। मतभेद का कारण क्या है? सेठ जी ने कहा कि शंकराचार्य जी की मान्यता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मतलब ब्रह्म सत्य जगत झूठा है, यह बात सिद्ध के लिए लागू पड़ती है, साधक के लिए नहीं, अतः साधक को ऐसा मानने पर भटकाव की ज्यादा गुंजाइश होती है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं दिया कर्म छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। शंकराचार्य जी ने मुक्ति के लिए कर्म त्याग करके संन्यास आश्रम की अनिवार्यता बताई है, ये मुझे मान्य नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा था ज्ञान का पंत कृपाण की धारा, सेठ जी ने कहा कि मेरी ये बात समझ में नहीं आती। शरणानंद जी महाराज दोष के त्याग पर ज्यादा जोर देते थे, उसके बिना साधन संभव नहीं मानते थे तथा उनका नाम जप ध्यान और अभ्यास में भी जोर नहीं था, इसलिए उनसे 14 आना बात नहीं मिलती थी। परमेश्वर जी चौधरी को चर्म रोग हो गया, पूरे शरीर से मवाद गिरता था, काफी औषधियां की कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार सेठ जी गए तथा उन्हें कोई औषधि बताई और कहा कि आप ये लगाकर सूर्य भगवान के सामने बैठ जाया करें तथा भगवान से कहें कि आपको जितने पाप भुगताने हैं मुझे भुगता दीजिए, आप भुगताते भुगताते थक जाएंगे पर मैं भोगते भोगते नहीं थकूंगा, ऐसा आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। उन्होंने वैसा ही किया और 2-3 दिन में उनको काफी लाभ हो गया। एक बार वटवृक्ष के नीचे सेठ जी ने कहा कि देखो मैं बनिया हूं, भिक्षा मांगने का मेरा अधिकार नहीं है, फिर मैं आज आपसे एक भिक्षा मांगता हूं। लोगों ने कहा कहिए। सेठ जी ने कहा आप लोग इतना सत्संग करते हो, अपने मन में ये मत लाइएगा कि अब हमारा पुनर्जन्म होगा, ये बिल्कुल मन में मत लाना कि हमारा पुनर्जन्म होगा। एक बार एक व्यक्ति ने सेठ जी से पूछा कि क्या भगवान सर्वशक्तिमान है? सेठ जी ने कहा है। तो पूछा क्या वो अपना विनाश कर सकते हैं? सेठ जी ने कहा कि हमारा भगवान पागल नहीं है, अपना विनाश करना तो पागलों का काम है। सर्वशक्तिमान का अर्थ सर्वशक्ति सृष्टि के पालने में है। रामेश्वर लाल जी जालान के साले के परिवार में किसी बहू को प्रेत ने पकड़ रखा था, काफी दिनों से तंग कर रखा था। सेठ जी भागलपुर गए, रामेश्वर लाल जी ने सेठ जी को उनके घर बुलाया। सेठ जी ने समय दिया, आने में थोड़ा विलंब हो गया। उनके घर में कोई स्त्री बोली, यहां भूत प्रेत रहते हैं, सेठ जी यहां काय को आएंगे। इतने में ही सेठ जी घर में प्रवेश करते दिखे और कहा कि लो आज आपके घर में भगवान आ गए, भूत प्रेत भग गए। सेठ जी ने कहा बुलाओ, किस पर है प्रेत बुलाओ। कहा कि महाराज इसके ऊपर है, आने पर गंगा जल हाथ में लेकर कोई मंत्र पढ़कर उस पर छिड़का तो अंदर से प्रेत बोला, सेठ जी मेरा उद्धार हो गया है, अब मैं जा रहा हूं, बहुत अच्छा हुआ। बाद में रामेश्वर लाल जी ने सोचा कि भूल हो गई, उससे ये पूछते कि ये कौन था और यहां कैसे आया। फिर उस स्त्री से बात की तो उस प्रेत ने आकर बताया कि मैं एक वैष्णव मंदिर में पुजारी था, मंदिर में चोरी करता था, इसलिए मैं प्रेत बन गया। वह देवरिया मायके से मेहंदी मंडवाकर मेहंदी लगे गीले हाथों से भागलपुर जा रही थी, इसलिए मैं रास्ते में उसके साथ लग गया, अब मेरी मुक्ति हो गई, मुझे बुलाया मत करो, मौत आने में कष्ट होता है। मैंने इससे सात भगवान के लिए भागवत के लिए कहा था, लेकिन इसकी हैसियत नहीं थी, फिर भी इसने कई जगह आयोजित कथाएं वहां करवा कर सुनी, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हुई, आज सेठ जी से मेरी मुक्ति हो गई। सेठ जी को किसी ने कहा कि थोड़ा चमत्कार दिखाओ सेठ जी, तब लोग सत्संग में आएंगे। सेठ जी ने कहा कि मैं जैसा चमत्कार दिखाता हूं ऐसे जादूगर नहीं दिखाते हैं। कि आप क्या दिखाते हैं कि मैं एक ही क्षण में आपको ये बता देता हूं कि आपका जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो उसी समय आपका ध्यान परमात्मा में जाता है, इससे बढ़कर और क्या चमत्कार होगा। महाराज जी कहते थे कि सेठ जी ने एक बार अपने सत्संगियों से कहा कि चमत्कार बताऊं, बताओ, तो ये खाट है खाट, उस खाट को दांत से पकड़ के उठा लिया उन्होंने। सेठ जी पहले खूब जवान थे, ऊंट को यहां दो हाथों ऊंट को उठा लिया, ऐसा सुना।